लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे वैवाहिक जीवन की तैयारी में लगे युवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि वे ख्रिस्तीय समुदाय से समर्थन प्राप्त कर विवाह के सौंदर्य का ध्यान करें तथा प्रेम, उदारता, निष्ठा और धैर्य में विकसित होते रहें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामायिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। प्रस्तोता हैं सिस्टर अनुग्रह मिंज और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओं, सबसे पहले बात करते हैं महामारी कोविड-19 की। पूरे विश्व में अब तक यानी 18 जून तक 17,82,06,491 मामले और 38,58,015 लोगों की मौत दर्ज किए गए हैं। भारत में अब तक 2,97,62,793 मामले और 3,83,521 लोगों की मौत दर्ज किए गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि पिछले 7 हफ्तों में कोरोना वायरस संक्रमणों के मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन मृतक संख्या में गिरावट की रफ्तार कम है। 1.5 वर्ष में वैश्विक महामारी के दौरान यह पहली बार है जब इतनी लंबी अवधि तक संक्रमितों की संख्या में कमी नजर आई है। यूएन स्वास्थ्य एजेंसी ने जी समूह के देशों द्वारा वैक्सीन को साझा किए जाने की घोषणा का स्वागत किया है, मगर दोहराया है कि इन खुराकों को जल्द से जल्द वितरित किया जाना होगा। यूएन स्वास्थ्य एजेंसी के महानिदेशक टेड्रोस एडहेनम घेब्रेयेसस ने सोमवार को जिनीवा में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि अफ्रीका में वैक्सीनों, निदानों व ऑक्सीजन की पूर्ति की बेहद कमी है और ऐसे में वहां संक्रमण के मामले बढ़ने से चिंता उभर रही है। नए तथ्य दर्शाते हैं कि वायरस के नए प्रकार की वजह से दुनिया भर में फैलाव की गति तेज हुई है, खासकर उन लोगों के लिए खतरा बढ़ गया है जो कि सुरक्षा के दायरे से बाहर हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने आगाह किया है कि फिलहाल वायरस वैश्विक स्तर पर वैक्सीन वितरण की गति से ज्यादा रफ्तार से फैल रहा है। उन्होंने कहा कि G7 और G20 समूह के देशों के पास वैक्सीन की 11 अरब खुराकों को प्रदान करने की क्षमता है और उन्हें ऐसा करना चाहिए। महानिदेशक ने यूएन स्वास्थ्य एजेंसी ATC एक्सीलेटर पहल और महामारी से निपटने की तैयारियों के लिए प्रस्तावित संधि के लिए G7 के समर्थन का स्वागत किया है। साथ ही निर्धन देशों के लिए 87 करोड़ वैक्सीन की खुराकों को साझा किए जाने की घोषणा की सराहना की है, जिससे मुख्यतः न्याय संगत वैक्सीन वितरण के लिए स्थापित कोवैक्स पहल के जरिए भेजा जाएगा। यूएन समर्थित कोवैक्स पहल में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वैक्सीन अलायंस गावी, महामारी संबंधी नवाचार तैयारी के लिए गठबंधन CEPI और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ हैं। साथ ही 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस से पहले बाल श्रम वैश्विक अनुमान 2020 रुझान और आगे की राह नामक यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष द्वारा जारी की गई। नई रिपोर्ट बताती है कि 2 दशकों में पहली बार बाल श्रमिकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। दुनिया भर में काम पर लगाए जाने वाले बच्चों का आंकड़ा अब 16 करोड़ पहुँच गया है। पिछले 4 वर्षों में इस संख्या में 84 लाख की वृद्धि हुई है। इस रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि कोविड-19 महामारी के कारण लाखों अन्य बच्चों पर जोखिम मंडरा रहा है। कोविड-19 महामारी के परिणाम स्वरूप 2022 के अंत तक वैश्विक स्तर पर 90 लाख अतिरिक्त बच्चों को बाल श्रम में ढकेले जाने का खतरा है। इस रिपोर्ट पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली में UN हिंदी न्यूज की अंशु शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के भारत कार्यालय में नेशनल प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर रंजीत प्रकाश से बातें की और सबसे पहले रिपोर्ट की अहम निष्कर्षों के बारे में पूछा।
यह पता चलता है इस रिपोर्ट को देखने के बाद कि 2 दशकों में बाल श्रम उन्मूलन में जो सुधार आई थी अब वो धीमी पड़ गई है। और दो दशकों से मेरा मतलब है कि सन 2000 और 2016 के बीच में मजदूरों की संख्या में करीब 9.5 करोड़ की कमी आई थी, और वो जो कमी आई है वो रुक सी गई है। जो बाल मजदूर हैं उनकी कुल संख्या करीब 16 करोड़ है, उसमें से 85 से 90 लाख बाल श्रमिक पिछले 4 वर्षों में जुड़े हैं। 2000-2016 के बीच तो सबसे अच्छी प्रगति देखी गई थी एशिया पैसिफिक में ही, जिसका कि दक्षिण एशिया हिस्सा है साउथ एशिया, लेकिन अब कोविड के हिसाब से दुनिया भर में बाल श्रमिकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। स्वाभाविक है कि दक्षिण भारत में भी इसका प्रभाव होगा और संख्या बढ़ेगी।
तो क्या इसका कारण, इस बढ़ोतरी का कारण कोविड-19 ही है या कोई अन्य कारक भी है जो इसके लिए जिम्मेदार माने जा रहे हैं?
सिर्फ कोविड-19 के चलते कितने बाल श्रमिक जुड़े या जुड़ सकते हैं इसका डेटा नहीं है इस रिपोर्ट में, लेकिन यह तय है कि बताया गया है कि जिस तरह की गरीबी बढ़ रही है उससे करीबन 90 लाख और मतलब 1 करोड़ के आसपास में 2022 तक, जो कि हार्डली 1 साल और बचा हुआ है, उसमें संख्या बढ़ जाएगी। सबसे बड़ा कारण इसमें बताया गया है कि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसकी संरचना, जिसे हम स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम ऑफ रूरल इकोनॉमी भी कहते हैं, तो जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि कार्य और पारिवारिक कार्य ये दोनों जुड़ करके इस नंबर को बढ़ा रहे हैं, और इसको अगर नहीं रोका गया तो बहुत बड़ी समस्या बनने जा रही है। साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि बाल श्रम की संख्या वहीं बढ़ रही है जहां कानून को ठीक तरह से लागू नहीं किया जा रहा, यह भी एक कारण है। और इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि जहां पे इनफॉर्मल इकोनॉमी है, खास करके कृषि कार्य है उसमें, और जो सप्लाई चेन है, जो घर पे काम होते हैं छोटे छोटे काम, उसमें इन बच्चों को जोड़ा गया है।
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के भारत कार्यालय में नेशनल प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर रंजीत प्रकाश।
संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायुक्त कार्यालय OHCHR के प्रमुख मिशेल बासलेट ने चेतावनी जारी की है कि म्यांमार में बड़े पैमाने पर खून खराबा रोकने और मानवीय संकट को गहराने से बचाने के लिए वहां तेज होती हिंसा को रोका जाना होगा। उन्होंने क्षोभ जताते हुए कहा कि महज 4 महीनों में म्यांमार एक नाजुक लोकतंत्र से मानव अधिकारों के लिए त्रासदी बन गया है, और मौजूदा संकट के लिए सैन्य नेतृत्व की जवाबदेही तय की जानी होगी। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सचिन गौड़।
खबरों के अनुसार देश के काया और चिन्ह प्रांत में सैन्य जमावड़ा बढ़ रहा है। पिछले 3 हफ्तों में 1 लाख से अधिक लोगों ने घर से भागकर जंगलों में शरण ली है और उनके पास भोजन, पानी और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। UN मानवाधिकार कार्यालय की शीर्ष अधिकारी ने शुक्रवार को एक बयान जारी कर क्षोभ जताया कि महज 4 महीनों में म्यांमार एक नाजुक लोकतंत्र से मानवाधिकारों के लिए त्रासदी बन गया है।
In addition to the loss of life, people are suffering from severe impacts on their social and economic rights.
UN मानवाधिकार कार्यालय की प्रवक्ता रवीना शम दसानी कह रही थी कि बड़ी संख्या में लोगों की जाने गई हैं और उनके सामाजिक व आर्थिक अधिकारों पर गंभीर असर हुआ है। इस संकट के लिए म्यांमार का सैन्य नेतृत्व जिम्मेदार है और उसकी जवाबदेही तय की जानी होगी। म्यांमार में 1 फरवरी को देश में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को हटाए जाने और सैन्य नेतृत्व द्वारा सत्ता हथिया लिए जाने के बाद से अब तक 850 से अधिक लोगों की मौत हुई है। 4000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। बताया गया है कि सरकारी सुरक्षा बलों ने हथियारबंद गुटों के अलावा आम नागरिकों के खिलाफ भारी हथियारों का इस्तेमाल करना जारी रखा है। मानवाधिकार प्रमुख ने क्षेत्रीय स्तर पर कूटनीतिक प्रयासों को तेज करने का आह्वान किया है और ध्यान दिलाया है कि म्यांमार की सेना का ये दायित्व है कि वो अपने नागरिकों की रक्षा करे।
आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र रेडियो से लिए गए थे, और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।
उपहार
वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। वेटिकन इटली और यूनाइटेड किंगडम ग्लासगो में जलवायु परिवर्तन पर आगामी नवंबर माह के लिए निर्धारित COP26 विश्व सम्मेलन से पहले एक बैठक में भाग ले रहे हैं। इस बैठक का लक्ष्य जलवायु परिवर्तन के संकट से उभरने के लिए धर्म, विश्वास और नैतिकता पर आधारित योगदान देना है। गुरुवार को परम धर्म पीठी प्रेस ने एक संवाददाता सम्मेलन में विश्वास और विज्ञान शीर्षक से 4 अक्टूबर के लिए निर्धारित उक्त बैठक की घोषणा की, जिसमें संभवतः संत पापा फ्रांसिस भी शामिल होंगे। बैठक का आयोजन परम धर्म पीठ के लिए यूके तथा इटली के राजदूतावासों द्वारा किया जा रहा है, जिसमें कई धार्मिक नेता और वैज्ञानिकों के भाग लेने का अनुमान है। बैठक में परम धर्म पीठ की भूमिका की प्रस्तावना करते हुए गुरुवार को वेटिकन राज्य के विदेश सचिव महाधर्माध्यक्ष पॉल गालाघार ने पत्रकारों से कहा कि संत पापा फ्रांसिस ने जलवायु परिवर्तन संकट को हमेशा से गंभीरता पूर्वक लिया है, इसलिए ऐसा संभव है कि वे भी बैठक में शामिल हों। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन वर्तमान काल के समक्ष प्रस्तुत एक महान चुनौती है, जिसके प्रति उदासीन नहीं रहा जा सकता। महाधर्माध्यक्ष गालाघार ने कहा कि इन चुनौतियों का सामना करने के लिए समस्त संसाधनों को आकर्षित करना होगा तथा इनमें विश्वास, धर्म और मानवता के आध्यात्मिक आयाम निश्चित रूप से शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यदि इन आयामों को नजरअंदाज कर दिया जाए तथा केवल राजनीति और विज्ञान पर निर्भर रहा जाए तो हम सफलता कदापि नहीं पा सकेंगे। महाधर्माध्यक्ष ने इस बात पर बल दिया कि जलवायु परिवर्तन का सामना करने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता सघन हुई है तथा विगत कुछ समय से विश्व पर छाए महामारी के संकट ने दर्शा दिया है कि विभिन्न आर्थिक, सामाजिक और आहार संबंधी संकट पृथ्वी के सभी लोगों को प्रभावित करते हैं। संत पापा फ्रांसिस के शब्दों को उद्धृत कर उन्होंने कहा, सब कुछ अंतर संबंधित है, इसलिए इन चुनौतियों का सामना केवल एकजुट होकर ही किया जा सकता है, जिसमें धर्म और विश्वास अद्वितीय ढंग से योगदान प्रदान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि धर्म जीवन, विश्व और जो कुछ उसमें है उसकी अखंड दृष्टि है, क्योंकि धर्म उन सब मुद्दों का आलिंगन करता है जो मानवीय अस्तित्व और मानव जीवन को प्रभावित करते हैं। वेटिकन ने शुक्रवार को संत पापा फ्रांसिस के एक ट्वीट संदेश की प्रकाशना की, जिसमें संत पापा ने स्मरण दिलाया है कि अपनी कमजोरियों के बावजूद हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम सब ईश्वर की प्रेममय संतान हैं। शुक्रवार को प्रकाशित ट्वीट में संत पापा फ्रांसिस लिखते हैं, हमारी शक्ति और कमजोरियों के परे, हमारे अतीत के सभी दुख कष्टों और असफलताओं के परे या भविष्य के हमारे डर और हमारी चिंताओं से कहीं अधिक मजबूत यह महान सत्य है कि हम ईश्वर की प्रिय संतान हैं। म्यांमार में सेना की मनमानी के तहत कैथोलिक पुरोहितों का उत्पीड़न जारी है। बुधवार को कनपेटलेट नगर में एक कैथोलिक पुरोहित को एक नागर प्रतिरोध समूह को भोजन उपलब्ध कराने के संदेह पर गिरफ्तार कर लिया गया था और बाद में रिहा कर दिया गया। म्यांमार के पश्चिमी चिन प्रांत में सेना ने 16 जून को हाका धर्म प्रांत की एक कैथोलिक पल्ली के निवास पर छापा मारा तथा फादर माइकल आउंग लिंग को चाइना डिफेंस फोर्स नामक नागरिक प्रतिरोध समूह को भोजन उपलब्ध कराने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। पल्ली निवास में चावल की बोरियों के मिलने के बाद फादर पर उक्त आरोप लगाया गया तथा उन्हें गिरफ्तार कर उनसे 11 घंटों तक पूछताछ की गई। तदुपरांत एक पत्र पर हस्ताक्षर करने के उपरांत ही सेना ने उन्हें रिहा किया। इससे पूर्व 12 और 13 जून को भी मंडलय महाधर्म प्रांतीय गिरजाघरों पर छापा मारा गया था तथा 6 कैथलिक पुरोहितों को गिरफ्तार किया गया था। गौरतलब है कि फरवरी के सैन्य तख्ता पलट के बाद से म्यांमार अराजकता में डूब गया है। निर्वाचित सरकार को हटाने और उसके नेता आंग सान सू की को हिरासत में ले लेने के बाद से हो रहे विरोध प्रदर्शनों और हड़ताल ने अर्थव्यवस्था को पंगु बना दिया है। सेना के तख्ता पलट ने सेना और कुछ सशस्त्र जातीय संगठनों के साथ साथ स्वतंत्र नागरिक प्रतिरोध समूहों के बीच म्यांमार के पुराने संघर्षों को फिर से भड़का दिया है। बहुत से सशस्त्र दल राइफलों और अन्य हथियारों का उपयोग कर रहे हैं तथा निर्दोष जनता के जीवन को खतरे में डाल रहे हैं। कलीसियाई सूत्रों से मिली खबर के अनुसार कनपेटलेट शहर से 48 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मिदांत नगर में घातक आक्रमणों के बाद 13 मई को म्यांमार में सेना ने मिदांत और उसके आस पड़ोस के इलाकों में मार्शल लॉ लागू कर दिया है। इसके एक दिन बाद ही सैनिकों ने मिदांत के सेक्रेट हार्ट गिरजाघर और पल्ली निवास पर छापा मारा था तथा वहां रह रहे 3 कैथलिक पुरोहितों से कई दिनों तक पूछताछ की थी। बताया जाता है कि कनपेटलेट मिदांत तथा हाका धर्म प्रांत में 18,000 से अधिक लोग हाल के संघर्ष के कारण विस्थापित हो गए हैं, जो अब अस्थायी शिविरों में शरण ले रहे हैं। इसके अतिरिक्त लगभग 50,000 लोग अपने घरों का पलायन कर जंगलों में छिप गए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव अंतोनियो गुतेरेस ने मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने हेतु समर्पित विश्व दिवस 17 जून को एक संदेश जारी कर चेतावनी दी है कि यदि प्रकृति के ह्रास को रोकने के लिए उपयुक्त उपाय नहीं किए गए तो भविष्य संकट में पड़ सकता है। महासचिव गुतेरेस ने कहा, मानवता प्रकृति के विरुद्ध एक अथक आत्मविनाशकारी युद्ध छिड़ रही है। जैव विविधता घट रही है, ग्रीन हाउस गैसों की सार्द्रता बढ़ रही है और हमारा प्रदूषण दूर दराज के द्वीपों से लेकर सबसे ऊंची चोटियों तक बढ़ता चला जा रहा है। हमें प्रकृति के साथ शांति बनानी चाहिए। श्री गुतेरेस ने इस बात की ओर ध्यान आकर्षित कराया कि भूमि, जो मानव जाति की सबसे बड़ी सहयोगी है, आज जलवायु परिवर्तन और कृषि, शहरों तथा बुनियादी ढांचे के विस्तार के परिणाम स्वरूप पीड़ित है। उन्होंने कहा, भूमि शरण विश्व के 3.2 अरब लोगों की खुशहाली और जीवन पर दुष्प्रभाव डाल रहा है। भूमि क्षरण जैव विविधता को नुकसान पहुंचाता तथा कोविड-19 जैसी संक्रामक महामारियों के उद्भव को प्रश्रय देता है। महासचिव ने कहा कि मरुस्थलीकरण और सूखा पहले से अस्तित्व में बने उजाड़ प्रदेशों का विस्तारीकरण नहीं है, बल्कि यह मानव गतिविधियों का परिणाम है जिसे रोका जाना नितांत आवश्यक है। और इसी के साथ वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।